हामिला के लिए हर माह के एतबार से करने वाले कुछ आमाल हैं, हर माह के एतबार से करने वाले। इसकी एक लिस्ट औरतों के पास होनी चाहिए, एक चार्ट की सूरत में होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला, पहले माह करने वाले जो आमाल हैं, अच्छा देखिए इसमें अभी आगे चलकर उसकी तफसील आएगी। सबसे पहले हम पहले महीने से आगाज करते हैं। पहले महीने हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले दो खजूरें सूरह कदर पढ़कर खाए। देखिए इन चीजों के अभी मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है, वरना खजूरों के भी सारे असरात जो है वो बयान किए जा सकते थे इस मौके पर, लेकिन वो आप खुद तलाश कर रही हैं। रूहानी जो गजाओं के जो रूहानी असरात के मौजू पर जो लेक्चर था उससे भी इस्तेफादा करें, उसके अंदर ये चीजें बताई गई थी कि रोजाना तुलू आफ्ताब से पहले दो खजूरें सूरह कदर पढ़कर खानी और फिर जो चाहे उसके बाद वो नाश्ता करें। अच्छा, इस पहले महीने में जितने भी, नंबर दो, जितने भी जुमेरात आए उसमें सूरह यासीन, और जितने भी जुमे आए उसमें सूरह साफात पढ़कर अपने शिकम पर फूंक मारे। जितने भी जुमेरात आए उसमें सूरह यासीन, और जितने भी जुमे आए इस महीने उसमें सूरह साफात पढ़े और अपने शिकम पर फूंक मारे। और जुमे के दिन नमाज फजर के बाद एक मुकम्मल अनार खाए। हरगिज भी सास नंदों वगैरह को शेयर ना कराए, उसमें से मुकम्मल खुद खाना है। ये तीन आमाल खास तौर पर इस पहले महीने अंजाम देने, हमल के दूसरे माह करने वाले काम या आमाल। हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले दो अंगूरों पर सूरह तौहीद पढ़कर खाए। इन सब के बड़े असरात हैं, बेहतरीन असरात हैं। हर रोज तुलू आफ्ताब के बाद दो अंगूरों पर सूरह तौहीद पढ़कर खाए, फिर जो चाहे नाश्ता करे। उसके बाद उस माह जितने भी जुमेरात और जुमाएं उसमें सूरह मुल्क की तिलावत करें। ये दूसरे महीने के जितने भी जुमेरात और जुमे आए उसमें सूरह मुल्क की तिलावत करें, और हर जुमेरात और हर जुमे को 140 मरतबा दुरूद मा अज्जिल व अज्जिल फरजहुम, اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم। एक सौ चालीस मरतबा हर जुमेरात को और हर जुमे को दुरूद इस तफसील के साथ पढ़ना। उसके बाद हमल का तीसरा महीना शुरू होगा। इस तीसरे महीने में हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले एक सेब पर आयतल कुर्सी पढ़कर खाए और उसके बाद जो चाहे नाश्ता करे। तुलू आफ्ताब से पहले एक सेब पर आयतल कुर्सी, ये तीसरे माह करना है। और इस महीने जितने भी जुमेरात और जुमे आए उसमें सूरह आले इमरान की तिलावत करना है, सूरह आले इमरान की तिलावत। अच्छा, और तीसरी चीज, हर जुमेरात और हर जुमे को इसमें भी 140 मरतबा दुरूद पढ़ना है व अज्जिल फरजहुम के साथ, ये तीसरा अमल है। उसके बाद जब चौथा महीना शुरू होगा हमल का, इसमें सबसे पहला जो अमल है वो है कि हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले दो इंजीरों पर सूरह वत्तीन पढ़कर खाए और उसके बाद जो चाहे नाश्ता करे। लेकिन चीजों की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है, खाने पीने की चीजों की बहुत अहमियत है, और खाने पीने की चीजों के ऊपर उन सूरों को पढ़ने की बड़ी अहमियत है, उसमें खास तासीर हो जाती है पैदा। देखिए ये जो भी जो आमाल अभी आपको बताए जा रहे हैं इनमें कुछ रिवायात से साबित हैं, कुछ उलमा के अकवाल से साबित हैं, और कुछ अमलियात के जो माहिर उलमा हैं उन्होंने बाकायदा अपने ऑब्जर्वेशन से चीजें निकाली और उन सबको मिलाकर जो है आपको बताया जा रहा है। तो हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले दो इंजीरों पर सूरह वत्तीन पढ़कर खाए, और इस माह जितने भी जुमेरात और जुमाएं उनमें सूरह दहर की तिलावत करें, सूरह दहर की। और तमाम नमाजों में, यानी हमल के चौथे महीने जितनी भी नमाजें पढ़ें उनमें कम से कम हर रोज की एक एक नमाज में सूरह कदर की तिलावत जरूर करें। और आमतौर पर तो ये आमतौर पर लोग राइज ही है और सूरह कदर बहुत ज्यादा राइज है कि लोग इसको नमाजों में पढ़ते ही हैं, लेकिन एहतमाम करना है इसका। और जिस वक्त 4 महीने गुजर जाएं, उसके बाद शौहर और बीवी क़िबला रुख होकर आयतल कुर्सी की तिलावत करें। देखिए 4 महीने के बाद रूह पड़ जाती है, और रूह पड़ते ही उसका आगाज आयतल कुर्सी से हो रहा है। शौहर और बीवी क़िबला रुख होकर आयतल कुर्सी की तिलावत करें। उसके बाद जब 5वां महीना शुरू होगा, तो उस 5वें महीने के जो आमाल हैं उसमें भी ये कि हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले एक अंडे पर सूरह अलहम्द पढ़कर खाए। यहां अब कहे बगैर बात ना रह जाए जाए कि अंडा खाना मकरूह नहीं है, बिल्कुल जायज है, हलाल है, मुबाह है। अंडा खाने में कोई कराहियत नहीं है कुछ लोगों का, जैसे कि कुछ बातें मशहूर हो गई। अच्छा, उसके बाद इस महीने में 5वें महीने में जितने भी जुमेरात और जुमा हैं उनमें सूर्य फतह की तिलावत करनी है, सूर्य फतह। और तमाम नमाजें जो भी इस महीने में अंजाम देंगी फी रोज के हिसाब से, रोजाना की एक नमाज में कम से कम सूरह नसर की तिलावत जरूर करनी, इजा जा नसरुल्लाह वल फतह, किसी न किसी एक नमाज में जरूर करनी। 5वें महीने और उसके बाद शौहर और बीवी बआवाज बुलंद कुरान की तिलावत करें, यानी उसके बाद के जितने भी दिन गुजरेंगे वजह हमल तक शौहर और बीवी दोनों। अब कहा जाता है कि जब 5वां महीना शुरू होता है तो बच्चा सुनने के काबिल हो जाता है, बच्चा सुनने के काबिल हो जाता है, अब बाबा से बुलंद तिलावत कुरान करनी। अब 6ठा महीना शुरू हो रहा है, 6ठे महीने में हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले एक अनार पर सूरह फतह पढ़कर खाए और उसके बाद जो चाहे नाश्ता करे। और इस महीने जितने भी जुमेरात और जुमाएं उनमें सूरह कद्र की तिलावत करें, सूरह वाकया की तिलावत करें, जितने भी जुमेरात और जुमाएं उनमें सूरह वाकया की तिलावत करें। और रात की किसी एक नमाज में सूरह वत्तीन की तिलावत जरूर करें, रात की किसी भी एक नमाज में मगरिब और इशा में से सूरह वत्तीन की तिलावत करें, अगरचे मकरूह है, अगर किसी को याद ना हो तो देख कर भी पढ़ सकती है। हमल का जब 7वां महीना शुरू हो तो रोजाना नाश्ते से पहले सूरह यासीन की तिलावत करें और फिर उसके बाद जो चाहे नाश्ता करें। और इस महीने में जितने भी जुमेरात आए उसमें सूरह यासीन और जितने जुमा आए उसमें सूरह मुल्क की तिलावत करें, जितने जुमेरात आए उनमें सूरह यासीन, जितने जुमा आए उनमें सूरह मुल्क की तिलावत करनी है। और हर जुमेरात और जुमे को 140 मर्तबा दुरूद माए अज्जिल फरजहुम इसको पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद वा आलि मुहम्मद। ये 7वें महीने के आमाल है। उसके बाद जब 8वां महीना शुरू हो तो 8वें महीने के अंदर हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, खास तौर पर कुछ सूरा हैं जो जरा 10-10 दफा पढ़ने। अच्छा, जाहिर है कि बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी मेहनत है इसके अंदर बाज़ औक़ात, क्योंकि देखिए हफ्ते को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है, और इतवार को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह वत्तीन पढ़नी है, पीर को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, मंगल को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह फुरकान पढ़नी है, बुध को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह दहर पढ़नी है, और हर जुमेरात को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह मोहम्मद पढ़नी है, और हर जुमे को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह साफात पढ़नी। तो देखा जाए इसमें कुछ सूरह ऐसे हैं जो जरा निस्बतन थोड़ी सी जहमत होगी, जरा बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर पूरे दिन में करके इसको डिवाइड करके पढ़ सकें तो पढ़ लें, वरना बिल्कुल मुमकिन ना हो तो 3 दफा, वरना 1 दफा तो कम से कम जरूर पढ़ लेना चाहिए बड़े सूरों को। जो छोटे सूरे हैं वो तो 10 पढ़ने में इतना वो नहीं है, लेकिन अगर वाकयातन औरत बहुत इंटरेस्टेड है कि मेरे बच्चे के ऊपर बहुत बेहतरीन इसके असरात मुरतब हो, नेक और साले हो, सारे फवायद उसको जो है हासिल हो, तो वो इस तरीक़ेकार को अगर पूरा कर ले तो बहुत ही ज्यादा फायदा उसको हासिल होगा। ये 8वें महीने करने के आमाल है। उसके बाद हमल का जब 9वां महीना आए तो इसमें रोजाना तुलुआ आफ्ताब से पहले दूध और खजूर पर सूर्य दहर पढ़कर खाए और फिर उसके बाद जो चाहे नाश्ता करे। दूध और खजूर पर सूर्य दहर। और इस माह जितने जुमेरात आए उसमें सूर्य हज और जितने जुमे आए उनमें सूर्य फातिर की तिलावत करें, सूर्य फातिर की। उसके बाद इसी महीने में हर नमाज जुहर और असर के दरमियान सूर्य वल असर और सूर्य वज़्ज़ारियात की तिलावत करें, जुहर और असर के दरमियान, सूर्य वल असर और सूर्य वज़्ज़ारियात। ये नवे महीने करने के आमाल हैं। अच्छा, नवे महीने में उलमा की तरफ से ताकीद है कि आईना औरत कम देखे। आप पूछेंगे आईना कम क्यों देखे, तो मैं जाती तौर पे कहूंगा इस वजह से कि बच्चे पर अच्छा असर पड़े। तो बहरहाल, खैर ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन बहरहाल ये कि आईना कम देखे। शायद इसका एक कनाया ये भी हो कि आप बच्चे की तरफ तवज्जोहात को मरकूज रखे, अपनी आराइश व बनाओ सिंघारी के अंदर फकत ना रहे, सारा वक्त पता चला इसके अंदर खाया जा रहा है, बच्चों को ज्यादा जरूरत है। अच्छा, शौहर इमाम जमाना अलैहि सलाम की सलामती के लिए, एक जानवर कुर्बान करवाए और उसके गोश्त का एक हिस्सा ये हामिला भी खाए, इसको खिलाए लाकर। अब किसी भी तरीके से पकाकर खाए, किसी भी उनवान से गिजा के तौर पर इमाम जमाना की सलामती के लिए एक जानवर कुर्बान करवाने के बाद उसका कुछ गोश्त शौहर हामिला को खिलवाए। अच्छा, आखिरी 3 महीने में हामिला खजूर और बही जरूर खाए, ताकि वो जो पैगंबर की भी रिवायत थी कि खुश अखलाक होगा बच्चा और बुर्दबार होगा, मुस्तदरकुल वसाइल की जो एक रिवायत थी। खजूर और बही ये आखिरी 3 माह के अंदर अलल खसूस, वैसे तो पूरे दौरान हमल खाए लेकिन खास तौर पर आखिरी 3 महीने में। और अमूमी तौर पर हामिला अपनी गिजा में शहद की मुनासिब मकदार रखे, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल मुनासिब मकदार, मसलन रोजाना 1 चमची या इस तरह से शहद खाए। और ये आखिरी महीने की बात नहीं हो रही, पूरे दौरान हमल इस सिलसिले को जारी रख सकती है। और उलमा फरमाते हैं अगर नुकसान ना हो तो हफ्ते में एक मरतबा सिरका जरूर खाए, अगर कोई नुकसान ना हो, यानी कोई ऐसी मना ना किया गया हो, कोई और ऐसी वजह ना हो, तो सिरका जो है वो जरूर खाए। और वही के मुतालिक जैसे था कि ये अकल और दानाई को बढ़ाने वाली चीज है, हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और वही की खसूसियत यह भी है कि यह बीनाई को भी तेज करने वाली चीज है। अच्छा, जो भी गिजाएं हामिला खाए कोशिश करें कि वो कम हजम हो, वॉल्यूम में जरा कम हो लेकिन गिजाइत में ज्यादा हो। आमतौर पर यह होता है कि वसन वो बहुत क्वांटिटी के अंदर बहुत ज्यादा चीजें ले लेती है जबकि उनकी गिजाइत इतनी नहीं होती। जैसे कि देखिए दूध है, उसको अपनी गिजा में रखना चाहिए, पैगंबर फरमाते हैं कि अंबिया की गिजा है दूध। फिर कैल्शियम की जो कमी वगैरह हो रही होती है कि नॉर्मल जो आपकी, देखिए क्यों कैल्शियम के आजकल सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं, एक तो वैसे ही डाइट में हमारे तकरीबन दूध ना होने के बराबर हो गया है, रोजाना जो डाइटरी इनटेक उसकी वो तकरीबन 10 गिलास दूध अगर पिया जाए तो उतना कैल्शियम आपके जिस्म में आता है जितनी जरूरत होती। तो जाहिर 10 गिलास आमतौर पे तो कोई पी नहीं सकता है, ना इसकी आदत रही है, तो फिर वो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं कैल्शियम के ताकि कमी वगैरह ना हो। और हर रोज 21 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमान इसमें उर्दू वाले तरीके से लिख दिया गया, लेकिन रोजाना 21 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर चंद दाने किशमिश के खाए। क्योंकि ये आपको पिछली मरतबा बात बताई गई थी कि किशमिश की खसूसियत यह है कि इंसान के बातिन को पाकीजा बनाती, ताकि ये पैदा होने वाला बच्चा ये पाकीजा फितरत का पैदा हो। अच्छा, खास तौर पर इस पूरे जमाने हमल में औरत को चाहिए कि वो इमाम जमाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुसूसी इर्तिबात रखे, ताकि ये खुद भी और इसका बच्चा ये इमाम जमाना की سپاہی بن سکیں، امام زمانہ کے خدمت گزار بن سکیں، اور اس کو امام زمانہ کی طرف خود کو متوجہ رکھنے کے لیے اور امام زمانہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ اعمال ہیں، جس میں سے ایک ہے، سب سے پہلا ہے دعائے عہد۔ دعائے عہد یہ ویسے بھی اس کا ایک ایک جو کلمہ ہے اس کا، اس کو پڑھنے سے یا ایک ایک حرف کو پڑھنے سے ہزار ہزار نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور ہزار گناہ محو ہوتے ہیں فی حرف، یا بہت سی جگہوں پہ ایک کلمہ، تو اتنی زیادہ یہ دعا عہد کی جو ہے وہ تاکید ہے، تو اس میں عہد کیا جا رہا ہے۔ اور امام کچھ خاص اس کے باقاعدہ آپ ترجمے کے ساتھ اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس میں آپ کو امام زمانہ سے کیا عہد آپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد الہی عظم البلاء و برہ الخفاء والی جو دعا، یہ والی دعا خاص طور پر، یعنی جتنی بھی یہ دعائیں اور زیارتیں امام زمانہ سے مربوط جو ہیں، جو منسلک ہیں، یہ پڑھتی جائیں گی، اتنی ہی امام زمانہ کی توجہ بھی اس کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، اس کے اور اس کے بچے کی طرف۔ اسی طریقے سے کوشش کرے کہ ہر نماز کے قنوت میں اگر اللہم کل ولیک الحجت والی جو دعا ہے، ہر نماز کے قنوت میں ویسے ہی اس کو پڑھا کرے، تو اس کا ارتباط امام زمانہ سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے دعائے ندبہ بھی اگر پڑھ سکے تو دعائے ندبہ پڑھے، اور خاص طور پر اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ دروس ایسے ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، جس میں امام زمانہ سے کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں بتائی گئیں۔ ایک تو فضائل وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تو ہر شخص کے کچھ نہ کچھ علم میں بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ زمانہ حمل گزرنے کے بعد اس بچے کو امام زمانہ کے سپاہی بنانے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کا ارتباط امام سے بڑھائیں گی، اور جب امام کے لیے چیز پڑھے گی، امام کو روزانہ سلام کرے گی، امام سے روزانہ عہد کرے گی، امام کے لیے روزانہ ندبہ کرے گی، روئے گی، اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرے گی، تو خود بخود امام زمانہ علیہ السلام کی توجہ اس کی اور اس کے بچے کی طرف ہوتی چلی جائے گی، اور اس کے بعد دونوں کا سعادت مند ہونا کوئی مشکل کی بات نہیں۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت میں اس بچے کو کامیاب بھی کروانا ہے، تو وہ عمل جو کہ پچھلے جو طالبات تھیں ان کو ہم نے بتایا تھا کہ جو امام خمینی کی کامیابی والا عمل تھا، شیخ حسن علی نخودی کی اسپہانی والا، اس کا میں ابھی موقع نہیں ہے، بس جلدی سے اس کو پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ دنیا آخرت کی ہر کامیابی تم کو حاصل ہو جائے گی اگر تم نے امام خمینی سے، ان کے استاد نے فرمایا تھا، اگر تم نے یہ کام کیا اور امام خمینی نے کرنا شروع کیا اور عظیم کامیابیاں حاصل کی۔ ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنی ہے، تین مرتبہ سورۃ توحید پڑھنی ہے، اور تین مرتبہ آخر میں تمام اعمال کو کرنے کے بعد تین دفعہ درود پڑھنا ہے، اور تین مرتبہ سورۃ طلاق کی تیسری آیت کا آخری جز اور چوتھی آیت سورۃ طلاق کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا والی یہ پڑھنی۔ یہ ہر نماز کے بعد معمول بنا لے تو یہ عورت اور اس کا بچہ دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی ان کو حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، اب کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ دوران حمل جو 9-10 مہینے کا جو پورا پیریڈ ہے، عام طور پر 9 مہینے کے اندر زیادہ تر پریگنینسیز نہیں ہوتی، ڈیلیوری نہیں ہوتی، بلکہ 10ویں مہینے میں ہوتی، یعنی اس لحاظ سے اگر ہم ہفتے کو کیلکولیٹ کریں کہ اس میں کتنے آئیں گے ویکس، تو تقریباً 40 ہفتے بنتے ہیں۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو 40 کا عدد جس میں مکمل ہونا چاہیے، خود 40 کے عدد کے اندر جو 40 ہے، اس کے عدد کے اندر اتنی برکت ہے کہ جس کا موقع نہیں، ایک زمانہ ایک وقت پچھلے دروس کے اندر کچھ ٹائم ایسا تھا جس میں ہم نے 40 کے عدد کی جو خصوصیات تھیں وہ بھی بتائی تھیں، جو آج تو موقع نہیں ہے اس کا۔ تو 40 ہفتے بنتے ہیں۔ اب یہ پورے یہ جو اعمال بتائے جا رہے ہیں، یہ پورے دوران حمل 40-40 مرتبہ ہو جائیں، اب چاہے پہلے دن سے لے کر 40 دن میں عورت مکمل کر لے، یا ہر ہفتے ایک ایک کر کے اور 40 ہفتوں میں مکمل کرے اور اس کے بعد آرام سے بیٹھی رہے۔ ایک آدھ عمل ایسے ہیں کہ جس کے اندر یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا ہے، روز کرنا ہے، وہ بھی آگے چل کر بیان ہوں گے، لیکن زیادہ تر عمل ایسے ہیں جو اس پورے دوران حمل ہو جانے چاہیے 40 دفعہ، چاہے بیچ میں ہو جائیں، درمیان میں ہو جائیں، بس اس حمل کے دوران ہونے چاہیے۔ उनमें सबसे पहला अमल है ज़ियारत आशूरा, जो इस पूरे दौरान हमल 40 मरतबा पढ़ लेनी चाहिए। उलमा ने फरमाया जो 40 वाले खासतौर पर आदत वाली चीजें अब आ रही हैं और जो पहले भी हैं, अगर इनको वाकई कोई इनकी पासदारी कर ले तो बहुत कवी इम्कान है कि ये बच्चा इमाम जमाना की फौज के हरावल दस्ते में शामिल हो जाएगा। ज़ियारत आशूरा 40 दफा, अब चाहे तो हर हफ्ते एक एक करके 40 हफ्तों में पूरा कर ले। और ये जो ज़ियारत आशूरा, ये 100 लान और 100 सलाम वाली, क्योंकि एक हफ्ते में समझिए एक दफा पढ़नी है उसको, तो 100 लान और 100 सलाम के साथ। अच्छा देखिए, ये जो ज़ियारत है ज़ियारत आशूरा, ये हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम अपने सहाबी अलकामा को तालीम की थी। बाकायदा कामिलु ज़ियारात के अंदर इब्न कौलविया ने इसको नकल किया है, बिहार की 101वीं जिल्द के अंदर भी। और इसके इतने ज्यादा फायदे हैं जो इस बच्चे को भी हासिल होंगे और इस हामिला को भी। आयतुल्ला शुबैरिया जंजानी माशाल्लाह से हयात हैं, कौम के मराजे में से एक हैं। आयतुल्ला शुबैरिया जंजानी फरमाते हैं कि एक आलिम थे सैयद मोहम्मद बिजनौरदी, उनके बेटे एक आंख से नाबीना हो गए। कह रहे हैं ईरान के अंदर भी बहुत इलाज करवाया उनका, ईरान से बाहर भी लेकर गए, बहुत इलाज करवाया, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, यहां तक कि दूसरी आंख भी उनकी बिल्कुल जाया हो गई। तो उनके एक आलिम रिश्तेदार ने ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है। और फरमाया कि जो भी ज़ियारत आशूरा पर मुदावेमत करेगा, यानी हमेशा रोजाना इसको पढ़ता रहेगा, उसकी आंखें हमेशा सलामत रहेंगी। उस लड़के ने भी पढ़ना शुरू किया, यहां तक कि उसकी जो हर तरफ से मायूस हो चुका था, उसकी दोनों आंखों की बीनाई वापस लौट आई। तो इससे पता चला कि ज़ियारत आशूरा, कम से कम ये जो बच्चा पैदा होगा इसकी आंखें बिल्कुल सही सलामत रहेंगी आंखों के लिहाज से, यानी उसका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का असर है जो कि बयान हुआ है। अच्छा, आयतुल्ला बहजत एक ज़ियारत आशूरा के लिए एक बात और कहते थे कि ये ज़ियारत आशूरा हदीस कुदसी की है, ये हदीस कुदसी या हदीस कुदसी की तरह है, बहुत मुजर्रब है ज़ियारत आशूरा। और उराफा में से जो शेख रजब अली खयात गुजरे, वो फरमाते थे कि मैं मरते दम तक ज़ियारत आशूरा को तर्क नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे आलम माना या आलम रूहानियत से इस बात की वसीयत की गई है कि हमेशा ज़ियारत आशूरा पढ़ते रहो। आलम रूहानियत से बाकायदा शेख रजब अली ख़यात को वसीयत की गई कि हमेशा ज़ियारत आशूरा पढ़ना। और बाकायदा वो जो इमाम की मुलाकात में सैयद रश्ती का वाकया बहुत ज्यादा मशहूर है, उसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने 3 दफा फरमाया था। आशूरा आशूरा आशूरा, यानी ज़ियारत आशूरा ज़ियारत आशूरा ज़ियारत आशूरा 3 मरतबा इमाम ने फरमाया था। ये जो अगर हामिला ज़ियारत आशूरा पढ़ेगी इस दौरान हमल, इसकी बरकत से हामिला और उसका बच्चे की उम्र बहुत तवील हो जाएगी, बीमारियां इससे दूर होती हैं। और इराक में वो वबा वाली जो एक वाकया है, वो तो बहुत ही ज्यादा ज़ियारत आशूरा के हवाले से मशहूर है, जो शेख अब्दुल करीम हायरी, जिन्होंने हौज़ा इल्मिया कुम की बुनियाद रखी थी, उन्होंने इस वाकये को सुनाया है। एक बहुत अरसे पहले मैंने वाकया इन्हीं से मंसूब करके सुनाया था, जबकि ये इसके रावी। शेख अब्दुल करीम हायरी फरमाते हैं कि हम जब वबा फैली हुई थी बहुत ज्यादा, और तो हम सब लोग आयतुल्ला फिशारकी के घर में जमा थे, आयतुल्ला फिशारकी, और सब बहुत परेशान थे कि एक एक घर से पांच पांच छह छह जनाजे रोजाना उठ रहे थे, इतने ज्यादा वहां पर वबा फैली हुई थी। तो कह रहे हैं उस वक्त आयतुल्ला मोहम्मद तकी शिराजी, वो मर्जे तकलीद थे, वो उस घर के अंदर आए और कहा कि मैं अगर एक हुक्म दूं तो तुम लोग मानोगे? सबने कहा हम मानेंगे। कहा कि अगर तुम सब लोग 40 दिनों तक ज़ियारत आशूरा पढ़ो तो इस मुसीबत ये वाली मुसीबत दूर हो जाएगी, और इसका सवाब अगर तुम इमाम जमाने की वालदा नरजिस खातून को हदिया करो। اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب مساجد کے اندر، گھروں کے اندر، ہر جگہ زیارت عاشورہ پڑھنا شروع ہوئے، فوراً ہی شیعہ گھرانوں سے تمام اموات ہونا بند ہو گئی. اچھا، اطراف میں ادھر ادھر غیر شیعہ افراد کی بھی اکثریت تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے گھروں سے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، شیعوں گھروں سے جنازے بالکل نہیں اٹھ رہے. آیت اللہ تقی شیرازی کے پاس وہ لوگ آئے، کیا آپ لوگوں نے ایسا عمل کیا؟ انہوں نے یہ عمل ان کو بھی بتایا کہ آپ لوگ بھی اس عمل کو کریں. انہوں نے جب کرنا شروع کر دیا تو پورے علاقے سے وہ وبا ختم ہو گئی. تو دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے، یہ زیارت عاشورہ، اس کو فقط اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ بس جس طرح سے کوئی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بس ہم نے پڑھا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، گناہوں میں فسق و فجور کے اندر زندگی ویسے ہی گزارتے رہے. بس ہمیں تو ایک وقتی مفاد لینا تھا، اور وہ مفاد پورا ہو جائے تو پھر ہمیں زیارت عاشورہ یا امام حسین سے معاذ اللہ کوئی اتنا زیادہ سروکار نہیں عملی زندگی میں. جب یہ باقاعدہ اس قسم کے نعرے اور بینر لوگوں نے بنائے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ خدا حافظ امام حسین. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین کو خدا حافظ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، سوگ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اب اس کے بعد ہر قسم کے گناہ اور گانے اور موسیقی اور فلمیں جو ہیں اس رات کو چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو گناہ کے معنی یہی ہیں کہ آپ امام حسین کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. تو زیارت عاشورہ یا کچھ، اب اس کو یہ نہیں کہ صرف وقتی فائدہ لینا ہے، بلکہ نہیں، اس کو اب مسلسل گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ وہ برکت جو زیارت عاشورہ سے حاصل ہوئی ہے مسلسل چلتی رہے. دوسرا عمل جو 40 جس کا میں عدد پورا ہو جانا چاہیے، وہ یہ ہے سورہ یاسین. 40 مرتبہ اس پورے دوران حمل سورہ یاسین کو 40 اناروں پر پڑھ کر کھائے، یعنی فی ہفتہ سمجھے ایک انار کے اوپر سورہ یاسین پڑھے اور اس پورے انار کو کھا جائے. یعنی سمجھیں کہ ایک ہفتے میں ایک انار کھانا ہے اس کو سورہ یاسین پڑھنے کے بعد، کیونکہ اتنا زیادہ دیکھیے اس کا ثواب اور فائدہ بھی کہ پیغمبر فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی جو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اسے 10 بار ختم قرآن کا ثواب دیا جاتا ہے. بہت سی جگہوں میں 12 بار مرتبہ ختم قرآن کا تذکرہ بھی، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھے گی 12 ختم قرآن کا اس کو ثواب ادا کیا جائے گا. اور ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی سورہ یاسین تلاوت کر لی جائے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ کہ وہ گھر کبھی بھی بدبختی اس کو نہیں دیکھے، بدقسمتی اس گھر میں نہیں آئے گی، وسواس کی بیماری سے وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے، اور کبھی کوئی سخت بیماری اس کو نہ لگے گی. یعنی اگر یہ حاملہ سورہ یاسین پڑھتی رہے گی تو کسی بھی سخت اور بڑی بیماری سے یہ اور اس کا بچہ محفوظ ہو جائیں گے. پیغمبر ایک اور فائدہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی کمارا اس سورہ یاسین کو اس نیت سے پڑھے گا تو وہ شادی شدہ ہو جائے گا. اب یہ حاملہ اگر اس کو پڑھ رہی ہے تو کم سے کم اس کا لڑکا یا لڑکی جو بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ کم سے کم شادی کا مسئلہ وہ دوران حمل ہی ان کا طے کر دے گی. اتنی زیادہ اس کی برکت ہوگی کہ یہ جو اس نے اگر اس 40 مرتبہ سورہ یاسین اس انداز سے پڑھی تو لڑکا ہو یا لڑکی جو پیدا ہوگا اس کا شادی کا مسئلہ دوران حمل ہی طے پا جائے گا. اور یہ بچہ نظر بد لگنے سے بھی محفوظ رہے گا. اور ایک اور بہت بڑا فائدہ سورہ یاسین کا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی زیارت نصیب ہونے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور اس سورہ کو خاص طور پر حمل میں پڑھنے کی تاکید اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک تو اس سورے کا جو ایک اور نام ہے وہ ہے سورہ دافعہ. سورہ دافعہ یہ ہر قسم کے مصیبتوں، بلاؤں، پریشانیوں کو دفع کرنے والا سورہ ہے، اس کا نام ہی ہے دافعہ. اور یہ جو سورہ ہے یہ حاملہ کی جو زندگی ہے اور اس کے بچے کی جو زندگی ہے اس میں ہر قسم کی شر اور برائی کو بالکل دور کر دے گی. अगर इसने सूरह यासीन को 40 मरतबा इस पूरे हमल के अरसे में पढ़ लिया। इस सूरह का एक और नाम सूरह मुअम्ममा भी है, मुअम्ममा यानी अमूम से मुश्तक, यानी ये अपने पढ़ने वाले कारी के लिए दुनिया और आखरत की हर खैर को अपने अंदर जमा कर लेती है अमूमी तौर पर। सूरह यासीन की इतनी ज्यादा ताकीद इसी वजह से आई है और खासतौर पर ज़बान हमल में पढ़ने की कि दुनिया और आखरत की हर खैर इस हामिला और इसके बच्चे के लिए जमा हो जाएगी अगर इसने 40 मरतबा इसको पढ़ लिया। इसी वजह से इसको कल्बे कुरान भी कहा जाता है, कुरान का दिल। अच्छा, कुरान का दिल सूरह यासीन है और जो सूरह यासीन का जो दिल है वो इसकी 59 नंबर वाली आयत सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये इसको सूरह यासीन का दिल कहा जाता है। इसकी अलग एक तफसीर है, ये कभी आप तफासीर के अंदर पढ़ें और इसके अलग फजाइल हैं इसके। तो सूरह यासीन जो कल्बे कुरान है इसको पढ़ने का फायदा ये होगा कि ये हामिला और उसका बच्चा, इसके जो जाहिरी कल्ब और इनका जो बातिनी कल्ब है ये बिल्कुल पाक और पाकीजा रहेगा, जाहिरी कल्ब भी और बातिनी कल्ब भी। और आयतुल्ला मरशी नजफी को बाकायदा इमाम जमाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, नमाज फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ने की ताकीद की थी। खुद इमाम जमाना ने आयतुल्ला मरशी नजफी को नमाज फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ने की ताकीद की थी। देखिए, जितने भी कुरानी सूरे हैं हकीकतन हमारे सारे आइम्मा इसके बहुत ज्यादा आशिक थे तिलावत कुरान के, से घबराना नहीं चाहिए, उफ 40 सूरह यासीन कैसे पढ़ेंगे और 40 सूरह फुरकान कैसे पढ़ेंगे, तो बहुत बड़े सूरे लग रहे हैं कि इतनी ज्यादा दफा पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। हमारे आइम्मा इस कदर आशिक थे तिलावत कुरान के कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो नोके नेजा पर तिलावत कुरान करने के बाद कुरान से अपने शगफ, अपनी मोहब्बत और अपने इश्क का इजहार किया था, सिर्फ अपनी जाहिरी जिंदगी में नहीं बल्कि शहादत के बाद भी नोके नेजा पर बुलंद होकर। तो ये दो आमाल हुए जो 40-40 दफा पूरे दौरान हमल अंजाम पा जाना चाहिए। तीसरा अमल जो 40 मरतबा होना चाहिए वो है सूरह यूसुफ की तिलावत, लेकिन सूरह यूसुफ की तिलावत 40 सेबों पर, यानी फी हफ्ता एक सेब पर सूरह यूसुफ पढ़े और उसके बाद उसको तनावुल करें। अच्छा, मैंने जैसे पहले कहा कि यह भी हो सकता है कि दो दो तीन तीन दिन का वक्फा देके इसको अदद को जल्दी मुकम्मल कर ले, टाइम ज्यादा हो और आराम से इसके लिए कोई मुश्किल ना हो तो ये इस तरह से भी मुकम्मल कर सकती है, वरना कम से कम ये एक हफ्ते के अंदर एक का तो एवरेज रखे। इसका एक फायदा यह होगा कि इसका जो भी पढ़ने वाला होता है रोजे कयामत वो हजरत यूसुफ की मानिन हसीन बना दिया जाएगा। अब ये इसको पढ़ने वाली जो हामिला है और इसका जो बच्चा है कि मैदान कयामत में इनका हुसन बेपनाह हो जाएगा, एक फायदा ये होगा। दूसरा फायदा जो इस दुनिया के अंदर भी होगा वो ये कि ये हामिला और उसका बच्चा हजरत यूसुफ की मानिन गुनाहों से पाक दामन रहेंगे, एक फायदा ये है इसका। और खास तौर पर शौहर और बीवी में अगर लड़ाई झगड़ा अगर बहुत ज्यादा होता हो और उसको रफा करना मकसूद हो तो ये दोनों शौहर और बीवी जाहिर रियलाइज तो करते हैं कि बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये दोनों अपने पास सूरह यूसुफ को लिखकर अपने जिस्म के साथ रखें सूरह यूसुफ को, तो इंशाल्लाह इनके दरमियान जो लड़ाई झगड़ा है वो दूर हो जाएगा। सूरह यूसुफ को लिखकर अपने साथ रखना, तो ये इस पूरे दौरान हमल 40 दफा हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो 40 का अदद पूरा होना चाहिए वो है ज्यारत जामे कबीर, ये 40 मरतबा हो जाने चाहिए, यानी वो एक हफ्ते में एक का हिसाब, और बड़ी वाली ज्यारत जामे, ज्यारत जामे कबीरा या कबीर। अच्छा देखिए, इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की तो बहुत सारी ज्यारतें हैं, अब उलमा ने एक सवाल उठाया कि इन तमाम ज्यारतों में से सबसे ज्यादा पसंदीदा इमाम को अपनी कौन सी ज्यारत है। खुद जो इमाम जमानों को सबसे ज्यादा पसंद है वो यही ज्यारत जामे कबीरा, वफाती में भी है, और इमाम जमाना सबसे ज्यादा इस ज्यारत से खुश होते हैं। रोज भी चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ 40 दिन तक पढ़ें, रोजाना पढ़ते चले जाएं। और ज़्यारत जामे कबीरा की जो बाकायदा उलामा ने तो शरह और तफासीर के अंदर तफासीर भी लिखी। अच्छा, इस ज़्यारत को अगर कोई शख्स पढ़ता है तो गोया उसने तमाम मासूमीन की ज़्यारत पढ़ ली, तमाम मासूमीन की ज़्यारत का सवाब उसको मिलता है। शायद इस वजह से भी इमाम ज़माना सबसे ज्यादा इसी ज़्यारत से खुश होते हैं, क्योंकि इसमें सारे सिर्फ उनकी बात नहीं होती, सारे मासूमीन की ज़्यारत इस ज़्यारत के नतीजे में हो जाती है। अल्लामा मजलिसी ने बाकायदा एक सच्चे ख्वाब में इमाम रिजा अलैहिस्सलाम की ज़्यारत की थी। जिसमें आठवें इमाम ने अल्लामा मजलिसी को ज़्यारत जामे कबीरा पढ़ने की ताकीद की थी। ज़्यारत जामे कबीरा, ये बाकायदा ये हमारे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से मरवी ये ज़्यारत है, ज़्यारत जामिया। अच्छा, आठवें इमाम की ज़्यारत तो अल्लामा मजलिसी को ख्वाब में हुई थी, सच्चे ख्वाब में। अल्लामा मजलिसी कहते हैं मुकाशिफे में, मुकाशिफा कहते हैं गोया दरमियानी सी कैफियत होती है, गोया सो भी नहीं रहे होते, जाग भी नहीं रहे होते, दरमियानी सी एक कैफियत होती है। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि मैंने मुकाशिफे में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को खुद इस ज़ियारत को पढ़ते हुए देखा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि इमाम ज़माना इस ज़ियारत को पढ़ने में मशगूल हैं, और इस ज़ियारत को जब इमाम ने ख़त्म किया तो इमाम ने एक जुमला फरमाया, क्या खूब ज़ियारत है। तो ज़ियारत जामे कबीरा और सारे मासूमीन की ज़ियारत का सवाब और सारे फवायद उसके इस हामिला और उसके बच्चे को अता कर दिए जाएंगे। अच्छा, फिर ये जो अब अगला अमल बता रहा हूँ, ये भी वैसे तो 40 का अदद कम से कम मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन अगर ये रोजाना हो जाए नमाज शब, लेकिन पूरे जमाने हमल में 40 नमाज शब तो लाजमी इसको पढ़ना। वैसे तो कोशिश करें कि रोजाना ही ये पढ़े, लेकिन कम से कम 40 दफा। देखिए, पैगंबर इस्लाम को मुकाम महमूद किस बिना पर अता हुआ था? कुरान की कायद भी है कि वमिन अल्लैल फतहज्जद बिही नाफिलत लका असा अन यबअथका रब्बुका मकामम महमूदा। इसके अंदर वजह बताई गई है कि पैगंबर को कि आप जो है नाफिला पढ़ें, रात को उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ें, नमाज शब पढ़ें, शायद इस बिना पर परवरदिगार आपको मुकाम महमूद पर फाइज कर दे। तो उलमा फरमाते हैं अगर ये रोजाना नमाज शब ये औरत अगर पढ़ने लगेगी तो उम्मीद है कि ये मां और बच्चा बड़े मुकामात के ऊपर फाइज हो जाएंगे। और देखिए, एक बहुत बड़ा फायदा नमाज शब का यह भी है, इससे नफ्स जो है आपका पायमाल होता है। नफ्स आसान नहीं होता, नफ्स को उठाकर इबादत की तरफ रागिब करना, सर्दियों की रातें हो रही हैं, इंसान थका हुआ आ रहा लेटता है, नींद की लज्जत को छोड़ता है, तो उठकर नमाज से शब पढ़ने के मायने ये हैं कि अपने नफ्स को पायमाल कर रहा है। अब ये औरत अगर कम से कम 40 दफा या पूरे जमाने हमल में नमाज शब की पाबंदी करती तो इसके मायने ये हैं कि ये इसका जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी अपने नफ्स के हाथों मगलूब नहीं होगा, बल्कि हमेशा उस पर गालिब रहेगा। और देखिए, अगरचे जाहिर मुश्किल तो होती है, इब्तदान मुश्किल होती है, रोजाना उठ रही है, नमाज शब पढ़ रही है, खुद उसकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है मसलन, उसी में उठ के नमाज शब पढ़ रही है, लेकिन वो उन तमाम मुश्किलात को भी याद करें कि मसलन याद करें कि अमीरुल मोमिनीन ने लैलतुल हरीर उस तक के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, सिफीन के उसमें लैलतुल हरीर के मुताल्लिक कहा जाता है कि अमीरुल मोमिनीन ने 523 लोगों को तहे तेज किया था। 523 कितने ज्यादा मौला थके हुए थे, लेकिन उस रात को भी नमाज शब को तर्क नहीं किया था। और उसके बाद भी अमीरुल मोमिनीन की जो पूरी जिंदगी थी, किस तरीके से रात को उठकर अक्सर दफा जो है मस्जिद कूफा में जाकर नमाज शब के लिए जाया करते थे, दीवारों को पकड़ पकड़ के जाया करते थे। इसी रात की यानी सख्ती हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन आइम्मा की सीरत रही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज्यारत आशूर ने बाकायदा शब आशूर हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा को वसीयत की थी। कि नमाज शब में दुआ करने में मुझे फरामोश ना करना। हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दुरूद भेजिए ना मोहम्मद वाले, कैदो बंद की कितनी सौवतों में शाम गरीबा तक में नमाज शब को जो है अंजाम दिया। और इसी तरीके से हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी तमाम सख्तियों ने भी कभी नमाज शब को तर्क नहीं किया, हत्ता कि उनकी जो खादिमा फिजा है उस तक ने कभी नमाज शब को तर्क नहीं किया था। सख्तियों में, परेशानियों में, हर सूरत में नमाज शब को अंजाम देते थे। तो देखिए, इसका पढ़ने के नाम, इसको ना पढ़ने के मायने ये हैं। उलमा फरमाते हैं कि इससे तौफीकात सलब हो जाती हैं। बदबख्ती की अलामत है कि अगर कोई शख्स नमाज शब नहीं पढ़ता। और उलमा ये भी कहते हैं कि देखिए, हर नेक अमल का सवाब मुकर्रर है सिवाय नमाज शब के। नमाज शब का सवाब मुकर्रर किया ही नहीं गया, ये बिल्कुल मख्फी है, परवरदिगार जितना चाहे देता चला जाता। तो नमाज शब को बिल्कुल तर्क नहीं करना चाहिए। आयतुल्लाह बुरुजर्दी बाकायदा फरमाते थे, आयतुल्लाह हुसैन बुरुजर्दी आयतुल्लाह कोचानी के मुतालिक फरमाते थे कि इतने ज्यादा नमाज शब के पाबंद थे कि हर नमाज शब के कुनूत में दुआ अबू हमजा सुमाली पढ़ा करते थे। हर नमाज शब के कुनूत में, पता नहीं शायद ढाई पारे के बराबर दुआ अबू हमजा सुमाली, 40 मोमिनीन के लिए इसी तरह से दुआ। बहुत से लोग ये भी कहते हैं भाई 40 मोमिनीन के नाम तो हमें याद ही नहीं होते, चंद एक पे इक्तफा हो सकता ही नहीं हो सकता। तो ये तरीकेकार भी किया जा सकता है कि आप कुनूत में एक फहरिस्त लेके अपने सामने रख लें, उसमें देखकर भी 40 मोमिनीन के नाम लेते रहें, और उसमें अपने बच्चे का भी अगर नाम लिख ले तो उन दुआओं के अंदर, तो यह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा और तरबियत की उम्र के एतबार से बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। अच्छा, एक और फायदा यह होगा कि इस हामिला और इसका जो ये बच्चा है, इनकी उम्रें बहुत तवील हो जाएंगी। नमाज शब की बहुत खसूसियत है कि उम्र को बढ़ाती है। जब भी हमारे सारे मराजे कराम और उलमा कराम की उम्रें काफी ज्यादा होती हैं और नेकियों की तौफीक हासिल होती। अच्छा, ये बच्चा जो है, बच्चा होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, ये खूबसूरत भी पैदा होंगे अगर दौरान हमल नमाज शब की पाबंदी कसने की। रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा इनका वसी होगा। और कितनी ही सख्तियां क्यों ना हो, खुद इमाम खुमैनी की सीरत में मिलता है, कभी भी नमाज शब को तर्क नहीं करते थे। ख्वाह सफर में हो, किसी भी तरह की मुश्किल हो, नमाज शब जरूर पढ़ते थे। और खुद अभी आपको उसी अरसे पहले आयतुल्ला वहीद खुरासानी भी जब गए थे तो मस्जिद नबवी में भी 11 रकत नमाज, पूरी नमाज शब जो है वो वहां पर पढ़ी थी। तो हालांकि वो रियाजुल जन्ना वगैरह में इतना वक्त भी नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान से पढ़ी। 11 रकत ना पढ़ सके तो 3 रकत पढ़े, 3 रकत भी ना पढ़ सके तो कम से कम 1 रकत जरूर पढ़े। चलते फिरते भी पढ़ी जा सकती है और नमाज ईशा के फौरन बाद भी पढ़ी जा सकती है। सारे मसले मसाइल भी आपको इस सिलसिले में बताए जा चुके हैं। फिर एक और चीज जो 40 का अदद मुकम्मल होने के लिहाज से, वो है कि कम से कम इस पूरे अरसे में 40 मरतबा दुआए तवस्सुल जरूर पढ़े। यानी एक हफ्ते में एक मरतबा दुआए तवस्सुल रोज भी पढ़े तो क्या कहना, और पूरा बिल्कुल यकीन हो उसको। देखिए, आयमा मासूमीन से तवस्सुल एक ऐसी चीज है कि शेख अब्बास कुम्मी जो साहिब मफाती हैं, ये फरमाते, बल्कि इनके मुतालिक मिलता है कि इनका बेटा एक मरतबा शदीद बीमार हो गया, बिल्कुल लाइलाज, डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिए। अच्छा, थोड़े से उस लिहाज से, मिजाज के एतबार से, उन्होंने उसी वक्त एक कप मंगवाया या एक गिलास, और उसके अंदर अपनी उंगलियों को घुमाया और कहा, अच्छा कहा कि इसको अब शिफा मिल जाएगी, इसे पिला दो। लोगों ने पूछा कि आपने कौन सी दुआ पढ़ी है, क्या कोई भी दुआ नहीं पढ़ी, इतने तवील अरसे तक मैंने इन उंगलियों से फजाइल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने लिखे हैं। इतना तवील अरसे तक फजाइल अहले बैत लिखने के बाद भी अगर इनके अंदर शिफा की कैफियत पैदा ना हो तो मैं इन उंगलियों को कटवा के फेंक दूंगा। तो आपने देखा कि बहरहाल तो एक वसीला छोड़िए, दुआए तवस्सुल के अंदर तो 14 वसीले जो है वो जमा हो जाते हैं। और एक और खसूसियत की बात यह है कि अगर ये 40 मरतबा दुआए तवस्सुल इस अंदाज से पढ़ती रहेगी तो ये हामिला और उसका बच्चा कुछ अजबनी के मुस्तजाबुद दावत हो जाए, इनकी हर दुआ कबूल हो जाए, क्योंकि इस दौरान उसने 40 दफा दुआए तवस्सुल 14 मासूमीन से जो है वो पढ़ी। इसी तरीके से जो जिसमें 40 का अदद मुकम्मल होना चाहिए वो 40 दुआए कुमैल, 40 मरतबा दुआए कुमैल, यानी एक हफ्ते में एक मरतबा का एवरेज बनेगा। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि हजरत खिजर की दुआ है दुआए कुमैल, और मौला अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कुमैल इब्ने ज़ियाद को ये तालीम की थी, हर शबे जुमा इसको पढ़ा जाता है, हामिला और उसका बच्चा हर किस्म के दुश्मनों से इनकी हिफाजत होगी, रिस्क इनका बहुत ज्यादा वसी हो जाएगा, तमाम गुनाहों की मगफिरत रहेगी, और ये हामिला और उसका बच्चा हमेशा तौबा की तरफ रागिब रहेंगे। दुआए कुमैल को दौरान हमल पढ़ने का फायदा, जब ये हज के मौके पर देखिए कि वहां पर जो ईरानी जायरीन, जो खास तौर पे बैनुल हरमैन जो जगह, एक तो बैनुल हरमैन खुद करबला में है और एक बैनुल हरमैन यहां पर भी, एक तरफ पैगंबर इस्लाम और शहजादी वगैरह की कब्र है और दूसरी तरफ जो है तीन आइम्मा, चार आइम्मा और उस लिहाज से चार कब्रें जो हैं जो बनी हुई, तो 6 मासूमीन तो समझें यहीं पर हैं। तो इस बैनुल हरमैन में बैठकर वो लोग इसको तमाम दुआओं में से दुआए कुमैल का इंतखाब किया गया है, तो वो वहां पर पढ़ी जाती है और हत्ता के मराजे तक आयतुल्ला दस्ते गैब दुआए कुमैल बाकायदा इनका प्रोग्राम हुआ करता था, और इसकी बहुत सी शरहें जो हैं वो भी लिखी गई हैं दुआए कुमैल वगैरह की, तो उसको भी उस लिहाज से पढ़ना चाहिए कि इसके पैगाम क्या हैं, फकत अरबी के अंदर पढ़ते हुए ना जाए। खास तौर पर इस दुआ को अमीरुल मोमिनीन ने शबे 15 शाबान तालीम किया था कुमैल को, और मस्जिद बसरा के अंदर ये दुआ तामील हुई थी, तालीम हुई थी मस्जिद बसरा में। और ये भी हैरत अंगेज बात है कि कुमैल ने फकत एक दफा सुनकर ही इस पूरी दुआए कुमैल को हिफ्ज कर लिया था। बच्चों को भी चाहिए कि जो है इनको दुआए कुमैल जुबानी जो है याद होनी चाहिए। तो बहरहाल दुआए कुमैल इस 40 का जो अदद है ये इस दौरान हमल पूरा हो जाना चाहिए। इसी तरह से 40 मरतबा दुआए अहद, दुआ अहद 40 मरतबा, जिसमें वो वाली दुआ है जिसमें जानों पर हाथ मारा जाता है और बैत के अल्फाज जो है वो पढ़े जाते हैं। अच्छा, पिछले जितने भी आमाल बताए गए हैं उनमें तो सब में था कि हर हफ्ते का एक एवरेज बना लें, जल्दी भी पढ़ सकते हैं, एक साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआ अहद के मुतालिक उलामा ये कहते हैं कि इसमें गैप ना दें, इसमें मुसलसल इसको पढ़ें, पहले दिन से लेकर 40वें दिन तक मुसलसल पढ़ते हुए जाएं, इसमें गैप नहीं देना चाहिए दुआ अहद में। और इसमें गोया हामिला ये कहती है कि ये अहद मेरी तरफ से है, मेरे वालदैन की तरफ से है, मेरी औलाद की तरफ से है, मेरी नस्ल की तरफ से है, तो इस पर खसूसियत इस दुआए अहद के बहुत ज्यादा इसको फायदे हासिल होंगे। और यही वजह है कि इमाम ज़माना भी ये बात बयान फरमाते हैं कि अगर हमारे शिया अपने अहदो पैमान की पासदारी करें तो हमारी तरफ से उनसे मुलाकात में हरगिज ताखिर ना, और हकीकी मारिफत के साथ बहुत जल्द हमारी मारिफत उनको और ज्यारत उनको नसीब हो जाएगी, बहुत जल्द। अच्छा, अब देखिए जब इमाम की इसके नतीजे में, दुआएत के नतीजे में ज्यारत नसीब होगी, तो हमने पिछली दफा भी कहा था कि हामिला अच्छे नेक अशखास के चेहरों की ज्यारत करते, तो इस दौरान अगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा की उसको ज्यारत हो गई, तो इससे बेहतर क्या नतीजा और असर इसका होगा। दुआ अहद का जो बेहतरीन वक्त है उसके मुताल्लिक उलमा ये कहते हैं कि वो नमाज फजर के बाद है, उस वक्त उसको पढ़ा जाए। इसी तरह से जिसमें 40 का अदद पूरा होना चाहिए उसमें एक है ज़ियारत आले यासीन, ये भी 40 हफ्तों के अंदर इसको मुकम्मल कर लेना चाहिए। और ये ज़ियारत खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तौकी में मोहम्मद हमीरी को इमाम ने तहरीर फरमाई थी। और इस ज्यारत की बरकत से हामिला और उसके बच्चे को बहुत इम्कान है कि ज्यारत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नसीब होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अच्छा, आयतुल्ला बहजत ये बात फरमाते थे कि अगर दो में से किसी एक ज्यारत का आपको इंतखाब करना पड़े कि ज्यारत आशूरा पढ़ें या ज्यारत आले यासीन पढ़ें, तो फरमाते थे कि ज्यारत आले यासीन मुकद्दम है। वैसे तो उसकी अलग अहमियत है, इसकी अहमियत अलग है, लेकिन फरमाते थे कि अगर दोनों में से किसी एक अमर का इंतखाब करना पड़े तो ज्यारत आले यासीन मुकद्दम है। और फरमाते थे कि आयतुल्ला अब्दुल करीम कश्मीरी कहते थे कि रोजाना 1 घंटा कम से कम हर शख्स को चाहिए कि खिलवत में गुजारे, और उस खिलवत के उस टाइम को जिस तरह से भी चाहे याद खुदा में गुजारे, अलबत्ता उसके अंदर ज्यारत आले यासीन जरूर होनी चाहिए। देखिए, इरफानियात और बड़े मुकामात को हासिल करने के लिए ज्यारत आले यासीन, और सबसे ज्यादा तमाम ज्यारतों में मुजर्रम है कि जिस ज्यारत को पढ़ने के नतीजे में सबसे ज्यादा लोगों को ज्यारत इमाम नसीब हुई है वो ज्यारत आले यासीन है। सबसे ज्यादा इस ज्यारत को पढ़ने के नतीजे में इमाम की ज्यारत नसीब हुई है लोगों को। तो ये हुई एक बात, ये भी 40 का अदद इसका मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद अगली अगला जो अमल है वो है 40 बार हदीस किसा, 40 मरतबा का अदद पूरा हो जाना चाहिए। एक यानी एक एक हदीस किसा फी हफ्ते के एतबार से पढ़ ली जाए। आयतुल्ला शेख अब्दुल हुसैन खुरासानी फरमाते हैं कि तौफीकाते मानवी के खजाने दस्तियाब हो जाते हैं उस शख्स के लिए कि जो पाबंदी से हदीसे किसा पढ़ता रहे। और अगर दौरान हमल, फरमाते हैं आयतुल अब्दुल वहीद खुरासानी कि अगर दौरान हमल 3 महीने तक मुसलसल ये हदीसे किसा इसने पढ़ ली, मुसलसल यानी एक दिन के गैप के भी बगैर, वैसे तो यह है कि हफी हफ्ता के एतबार से पढ़े, लेकिन फरमाते हैं एक फायदा हासिल करने के लिए, खास फायदा, कह रहे हैं अगर 3 माह में मुसलसल इसने इसको पढ़ा हदीसे किसा को, तो बगैर किसी जहमत के और दिल से इसको नमाज शब पढ़ने की तौफीक हासिल हो जाएगी। आमतौर पर होता है ना नमाज शब के लिए बड़ा मुश्किल से पढ़ा जाता है, यानी बगैर हर किस्म की जहमत से आजाद हो जाएगी और इंतहाई शौक और रगबत के साथ ये नमाज शब पढ़ने की आदि बन जाएगी। बहुत बड़ा फायदा इसने बशर्ते इसने दौरान हमल कम से कम 3 महीने तक पाबंदी के साथ नमाज शब पढ़ी। और खुद इसके बच्चे पर फरमाते हैं बहुत अजीब व गरीब असरात नमूदार होते हैं, और तजर्बा किया है उन औरतों ने जिन्होंने खास तौर पर इस अमल को किया है, कि वो भी फरमाते हैं कि बचपन से लेकर जवानी तक अभी जिसका बच्चा है जो पैदा होगा ये हमेशा नमाज शब के अव्वल वक्त में बेदार होने वाला हो जाएगा, यानी नमाज शब का जो अफजल वक्त है, अफजल वक्त नमाज फजर से पहले वाला जो होता है, और ये नमाज शब के पाबंद हो जाएंगे। और खुद माओ ने इस बात का तजर्बा किया है कि अफजलियत जो जो 3 महीने तक इसको पढ़ती रहती, कहती है कि जिस वक्त नमाज शब का अव्वल वक्त आता है उस वक्त बच्चे की जो पेट में मूवमेंट और उसकी किकिंग है, जो पांव मारता है वो मां के शिकम पर, वो बहुत ज्यादा नमाज शब के अव्वल वक्त के अंदर बढ़ जाती, बहुत ज्यादा, और वो बच्चा बहुत ज्यादा इस बात का आदि बन जाएगा। उसके बाद जब ये बड़ा भी होगा तो नमाज शब के वक्त फजीलत के अंदर बेदार होने वाला हो जाएगा और उसे कभी नमाज शब कजा नहीं होगी। और यही वजह है कि आयतुल्ला बहजत भी फरमाते थे कि महाफिल हदीसे किसा जो होती हैं यहां पर मासूमीन अलैहिस्सलाम खुद हाजिर होते हैं। और महाफिल हदीस किसा में फरमाते थे कि खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी शिरकत करते हैं। और बाकायदा मौला अमीरुल मोमिनीन ने जो पैगंबर से एक दफा पूछा था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, कि परवरदिगार आलम की तरफ से इस वाकये की क्या फजीलत है, हदीस किसा वाला जो वाकया है। फिर पैगंबर ने फरमाया था कि मुझे उस जात की कसम जिसने मुझको हक के साथ मबूस किया है, जिस मजलिस के अंदर भी इसे पढ़ा जाता है, खुदा उस महफिल व मजलिस पर अपनी रहमत नाजिल करता है, रहमत के मलाइका उसमें शरीक होते हैं, और जितने भी शरीक महफिल होते हैं उनके लिए तलब मगफरत करते हैं, खुदा उनके तमाम गमों और परेशानियों को, उनके गमों को दूर कर देता है। ये सुनकर मौला ने फरमाया था कि खुदा की कसम हम और हमारे शिया ही दुनिया और आखरत में कामयाब और सआदतमंद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। और कसम खाकर पैगंबर के जुमले इरशाद फरमाने का मायने यही है कि खास तौर पर, यानी इसकी ताकीद मजीद है, तो लोगों को चाहिए कि पर अपने पास हर वक्त हदीस के साथ मोबाइल फोन में भी रखें, इधर उधर के हर जगह इसको पढ़ने में, ताकि आसानी हो। अच्छा, आयतुल्ला गुलपायगानी हमेशा से बिल्कुल जवानी ही के दौर, या बिल्कुल जिस वक्त दरस खारिज बहुत अव्वल से देते थे, हमेशा से हर मुश्किल के हल के लिए हदीस किस्सा की तिलावत की बहुत ज्यादा ताकीद करते थे। कहते थे हर मुश्किल के हल के लिए हदीस किस्सा पढ़ो, आयतुल्ला गुलपायगानी। और आयतुल्ला सैयद मोहम्मद रजा बहाउद्दीनी, जो अमलियात के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, वो फरमाते थे कि सद्दाम ने जिस वक्त ईरान इराक जंग हो रही थी तो मुख्तलिफ शहरों पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बमबारी शुरू कर दी थी, और इत्तला मिली थी कि मुख्तलिफ इलाकों पर सद्दाम जो है वो बमबारी कर रहा है, और उसका कुम पर भी बमबारी करने का इरादा है। तो लोग परेशान होकर आ गए सैयद मोहम्मद रजा बहाउद्दीनी के पास आए, अमलियात क्या बहुत बड़े माहिर हैं, तवस्सुल करें मासूमीन से, कोई हल निकालें इसका कि कौम के ऊपर बमबारी अगर हुई तो मासूम कौम का रोजा भी यहां पर, इसको भी नुकसान पहुंचेगा और सब अहले कौम को। तो फरमाते हैं आ गए रजा बहाउद्दीनी कि मैंने तमाम मासूमीन से तवस्सुल किया तो मुझे हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, ये पैगाम मिला कि अहले कुम हदीस किसा से तवस्सुल इख्तियार करें। फिर कह रहे हैं कि तमाम मसाजिद में और घरों में लोगों ने हदीस किसा पढ़ना शुरू की, और उसके फौरन बाद ना सिर्फ ये कि कोई बमबारी कुम के ऊपर नहीं हुई, बल्कि जो एक पायलट वहां पर जहाज बम गिराने के लिए आ रहा था, उसने अपने आप जो जहाज था उसको जमीन से यानी टकरा दिया, और खुद पैराशूट से वो पहले निकल चुका था जब उसको गिरफ्तार किया गया बाद में, और उसके बाद उससे इंटरव्यू लिया गया कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुम तो बमबारी के लिए आ रहे थे। उसने कहा कि मुझे नीचे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो घबराहट में मैंने अपने बम सब इधर उधर गिरा दिए, और कुम जो है वो मुकम्मल तौर पर बमबारी से महफूज हो गया इस हदीस किस्सा की बरकत से। अलबत्ता ये जो हदीसी किस्सा है इसको खास आदाब के साथ पढ़ना चाहिए। आगे सैयद मोहम्मद रजा बहाउद्दीनी फरमाते थे कि इसको मगरबैन के बाद पढ़ें, सबसे ज्यादा बेहतर है इसके आदाब में से कि इसको नमाज मगरबैन के बाद पढ़ा जाए, वैसे किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, और कई अफराद जमा होकर इसको पढ़ें, एक आदमी भी पढ़ सकता है, अकेली हामिला भी पढ़ सकती है, लेकिन एक महफिल सी घर में मुनाकिद कर लें, चंद घर की औरतें जमा हो जाएं, और हदीस किस्सा को पढ़ने से पहले 41 मरतबा दुरूद पढ़ें, 41 दफा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और अगर मुमकिन हो तो हाजिरीन हदीस किस्सा को हदीस किस्सा पढ़ने के बाद खाना भी खिलाया जाए, और क़िबला रुख होकर हदीस किस्सा को पढ़ा जाए, और इंतहाई मुअद्दब होकर खुशू खुजू के साथ हदीसे किस्सा को पढ़ा जाए। और आयतुल्ला बहजत के उस्ताद आयतुल्ला अली आका काजी फरमाते थे कि जिस वक्त हदीसे किस्सा पढ़ी जाए उस मौके पर ऊद भी जलानी चाहिए, खुशबू, खास खुशबू है, उसको जलाया जाए जिस वक्त भी हदीसे किस्सा पढ़ी जाए। और बच्चों को सिर्फ तिलावत कुरान नहीं, वो तो अपनी जगह पर है, या कुरान को हिफ्ज कराना नहीं बल्कि हदीस किस्सा को भी हिफ्ज करवाना चाहिए। हमारे मौलाना गुलाम अली वजीरी साहब जो हैं उनको भी हदीस किस्सा जुबानी याद है, अक्सर मस्जिद के अंदर जब भी वो यहाँ पर पढ़ते थे पहले तो वो हमेशा हदीस किस्सा को जुबानी पढ़ते थे, तो बच्चों को भी हदीस किस्सा जुबानी याद होनी चाहिए। इसका एक फायदा खासतौर पर बच्चों के हवाले से है कि वो बच्चे के जो के जिनकी जबान में लुकनत है, जो हकलाते हैं, स्टैमर करते हैं, उनको हदीस किस्सा बार बार अगर पढ़वाई जाए तो उनकी हकलाहट का मर्ज दूर हो जाता है हदीस किस्सा को बार बार पढ़वाने से। और कहा जाता है कि इतनी बाबरकत जो है महफिल इसकी होती है कि इसमें शरीक जो अफराद होते हैं उनकी अकल के अंदर भी बहुत ज्यादा बरकत पैदा हो जाती है। अकल में बरकत के मायने में इससे पहले बता चुका हूं कि फिर अकल आकिल शख्स कभी कोई गुनाह नहीं करता। और खास तौर पर उस महफिल में उराफा ने खास खुशबू उठती है उस महफिल से जहां हदीसे किस्सा पढ़ी जाती, जिसकी खुशबू को उराफा ने महसूस किया, हत्ता कि फरिश्ते आसमान से उस खुशबू को सूंघने के लिए जमीन पे आते हैं हदीसे किस्सा की जो जब जिस मौके पे वो पढ़ी जाती है। बाज अफराद उसकी आजकल सनद के ऊपर गुफ्तगू करनी शुरू कर दी है कि हदीस किस्सा की सनद वगैरह सही नहीं है, तो आगा सिस्तानी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सही उस सनद है, बिल्कुल हदीस किस्सा की सनद बिल्कुल सही। अच्छा, फिर उसके बाद जो 40 का अदद जिसमें पूरा हो जाना चाहिए वो है 40 गुस्ले जुमा वो अंजाम दे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये तो क्योंकि सिर्फ जुमे के दिन अंजाम दिए जाएंगे तो 40 जुमे अगर इस दौरान आए तो एक भी जुमा समझें उसको छोड़ना नहीं, और गुस्ले जुमा जरूर करना, कोई जुमा इसमें मिस नहीं होना। पहला फायदा तो ये होता है कि तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, और एक और बड़ा फायदा मरने के बाद ये होता है जिसे आयतुल्लाह कोमैली खुरासानी ने बयान फरमाया, जो कि असल में अहादीस के अंदर ही आया है, कि एक बहुत बड़ी वजह के जो कि लोगों के जिस्म कब्रों के अंदर खराब नहीं होते वो ये वो लोग होते हैं कि जो पाबंदी से जुमे के दिन गुस्ले जुमा करते हो। इसका एक बहुत बड़ा फायदा मरने के बाद होता है कि उनके जिस्म फिर खराब नहीं होते, जिस्म सही और सालिम होते। इनकी भी मैंने आपको दिखाई थी एक दफा आयतुल्ला काजिम कुजमीनी की, 7 साल बाद जब इनका जिस्म निकाला गया था और कौम से करबला मुंतकिल जिस्म किया जा रहा था, 7 साल बाद भी बिल्कुल तरोताजा इनका जिस्म बरामद हुआ, अभी कुछ ही अरसे पहले की बात है। और ये वाहिद गुस्ले जुमा एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा मुस्तहब काम है कि जिसको तर्क करना मकरूह है, किसी भी मुस्तहब काम को तर्क करना मकरूह नहीं है सिवाय गुस्ले जुमा के। गुस्ले जुमा को कोई शख्स तर्क करे तो ये मकरूह है। और इमाम छठे इमाम तो यहां तक ही जुमला इरशाद फरमाते हैं, कि जो अमदन जानबूझकर गुस्ले जुमा को तर्क करे उसे चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार करे। और ये असल में पैगंबरी की रिवायत है कि जो 40 रोज तक गुस्ले जुमा अंजाम देता रहेगा उसका जिस्म कब्र में खराब नहीं होगा, और एक जुमे से अगले जुमे तक के तमाम हमो गम और बलाएं उसकी दूर हो जाती हैं। यानी अगर ये हर गुस्ले जुमा को हर जुमे को अंजाम देती जाएगी तो एक जुमे से दूसरे जुमे तक में जितनी भी परेशानियां इसके और इसके बच्चे के लिए आने वाली होंगी वो सारी की सारी हम और गम और तमाम बलाएं और परेशानियां दूर हो जाएंगी। और इस तरह पूरा जमाना है हमल जो 40 हफ्तों वाला इस तरह का होगा, बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ गुजरेगा पूरा पीरियड, ये हमल का जो है इसके और इसके बच्चे के लिए बेहतरीन करार पाएगा, बेहतरीन। तो ये एक अलल खसूस इसके अंदर बात है कि जो कि करनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज है जो 40 का अदद जिसका पूरा हो जाना चाहिए वो है दुआए मुजीर। आगा कफ़मी ने अपनी किताब मिसबाह में इस दुआ को लिखा है, इसके अलावा अल बलदुल अमीन भी जो कि उन्हीं की किताब है इसके अंदर भी ये है। और ये उस वक्त दुआ परवरदिगार की तरफ से पैगंबर इस्लाम को तालीम की गई थी जब पैगंबर मुकाम इब्राहिम के पीछे नमाज को अदा कर रहे थे, और बाकायदा उसी वक्त जिब्रील अमीन इस दुआ को लेकर आए थे। ये गुना, ये जो जितने भी हम आम जिंदगी में ये गुना जो हम अंजाम देते हैं ये सारे के सारे दुआए मुजीर पढ़ते ही माफ हो जाते हैं। और खास जो इसके दिन हैं पढ़ने के वो 13, 14 और 15 रमजान है, ये अगर कभी इस दौरान आ जाएं तो खास औकात दुआए मुजीर पढ़ने की हैं, वरना आम दिनों में भी पढ़ी जा सकती है किसी भी वक्त। बीमारियों से शफा मिलती है और कर्ज अगर है तो वो अदा होता है, तमाम हम गम और अंदोह जो है वो सारे दूर होते हैं, गुना कितने भी हों सब बख्शे जाते हैं। रिवायतों में ख्वाह रेगिस्तान के जर्रों के बराबर भी क्यों ना हो और दरख्त के पत्तों के बराबर भी क्यों ना हो तो दुआए मुजीर को पढ़ने से बख्शे जाते हैं। तो हामिला के लिए बहुत जरूरी है कि इस दुआ को पढ़े, इससे एक फायदा ये होगा कि इसका और इसका जो बच्चा है ये तौबा की तरफ बहुत ज्यादा रागिब रहेंगे। रूह को जिला बख्शने वाली दुआ कहलाती है दुआए मुजीर। और 40 का जो अदद है वो है कि रोजाना 40 मरतबा सोने से पहले 40 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ना। वैसे तो हर नमाज के बाद 30 मरतबा पढ़ने की नूरानियत कल्ब के लिए बड़ी ताकीद आई, यानी कोई चाहे कि उसका कल्ब नूरानी हो जाए तो रोजाना नमाजों के बाद 30 मरतबा जो तस्बीहात अरबा इसको पढ़े। और नमाजों के बाद छठे इमाम हमारे जुमला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह मुसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कि नमाज के बाद जो भी 30 मरतबा इसको पढ़ेगा तो उसके बदन पर मौजूद हर गुनाह का असर साकित हो जाएगा, तमाम गुनाह साकित हो जाएंगे जिस्म के हर हिस्से पर अगर 30 मरतबा भी इसने इसको पढ़ा। और हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने तो एक और फरमाया, अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ा तो इसके पढ़ने का फायदा यह होगा कि वो शख्स जो इसको पढ़ रहा है 10 मरतबा नमाजों के बाद अल्लाह का सच्चा और पक्का दोस्त बन जाएगा और 1000 बलाएं इसकी दूर होंगी, जिसमें से सबसे कम यह है कि इस दुनिया में मुर्तद होने से बच जाएगा और आखिरत में 1000 दर्जात इसके लिए जखीरा किए जाएंगे, जिसमें से एक सिर्फ एक यह है कि उसको पैगंबर इस्लाम का पड़ोस और हमसायगी जन्नत में नसीब होगी। और सबसे अफजल यही कि नमाजों में तीसरी और चौथी रकत में आप तस्बीहात अरबा 3 मरतबा पढ़ती हैं, हर नमाजों के बाद देखिए 30 मरतबा पढ़ने की इसको ताकीद है। और हजरत अमीर तो ये जुमला भी इरशाद फरमाते हैं, रोजाना अगर कोई शख्स 360 दफा इसका अदद मुकम्मल कर ले तो रोजाना के तहफ्फुज की जमानत और बीमा उसका हो जाता है। 360 दफा का तस्बीहात अरबा, यानी समझे 3 तस्बियां और 60 दफा और, तो इस जो हामिला अगर पढ़ रही तो हामिला और उसका बच्चा हर मुसीबत और बला से महफूज हो जाएंगे। और खुद जो नमाज जाफर तैयार है उसी के अंदर भी ये 300 मरतबा तस्बीहात अरबा ही पढ़ी जाती है। तो इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, और नमाज वाजिब के अंदर भी आपने देखा कि इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, बल्कि ये उन मसाइल में से एक है कि अगर कोई शख्स गलती से तस्बीहात अरबा पढ़ना भूल जाए तो एहतियात मुस्तहब यह है कि 2 सजदे सहव अंजाम दे। बाकायदा आगा सिस्तानी ने तौसील मसाइल में भी लिखा है इसको, क्योंकि इसके अंदर देखिए खुदा की तस्बीह भी है, तहमीद भी है, तहलील भी है, तकबीर भी है, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो तस्बीहात अरबा इसको 30 मरतबा रोजाना नमाजों के बाद, आपने मुख्तलिफ अदद सुने, 10 मरतबा का भी फायदा है, 30 दफा का भी फायदा है, 360 दफा का भी फायदा है, जितना भी जिसके लिए मुमकिन हो इसको अगर अंजाम दे तो बहुत ही अच्छा है। तो ये दौरान हमल जितने भी इस तरह के आमाल जो थे अंजाम दिए जाए जो कि आज हमने बयान किए, तो बहुत ही ज्यादा उसके बच्चे पर बेहतरीन असरात होंगे। और इस पूरे पीरियड को इन आमाल को करते हुए इस हामिला को चाहिए कि इस अंदाज से इस पूरे पीरियड को ये गुजारे, और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारी अगली गुफ्तगू होगी तो डिलीवरी के वक्त और उससे पहले और उसके बाद जो खास तौर पर कुछ ऐसे आमाल हैं जो तरबियत औलाद के सिलसिले में काफी बेहतरीन आमाल समझे जाते हैं, वो इंशाल्लाह अगली दफा हम अगले लेक्चर में उसका जिक्र करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन।
रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन।